अध्याय 52 वार्षिक पर्व। यह अध्याय लैव्य व्यवस्था 23 पर आधारित है। पवित्र स्थान पर आराधना के लिए संपूर्ण इज़राइल की 3 वार्षिक पवित्र सभाएं होती थीं। निर्गमन 2 आयत 1-16। कुछ समय के लिए इन सभाओं का स्थान शीलो था, लेकिन बाद में यरूशलेम राष्ट्र की आराधना का केंद्र बन गया और पवित्र पर्वों के लिए गोत्र यहां एकत्रित होते थे। प्रजा उग्र व लड़ाकू जनजातियों से घिरी हुई थी जो उनके भूभागों को हड़पने के लिए उतावले थे, लेकिन फिर भी वर्ष में 3 बार सभी स्वस्थ शरीर वाले पुरुषों और यात्रा करने योग्य लोगों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने घरों से निकलकर देश के मध्य भाग के पास सभा स्थान पर पहुंचें। उनके असुरक्षित घरानों को आक्रमण द्वारा आग और तलवार से नष्ट करने को उनके शत्रुओं को क्या बाधित कर सकता था? देश पर उस आक्रमण को, जो इज़राइल को दोबारा किसी परदेशी शत्रु के अधीनस्थ कर देता, क्या रोक सकता था? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो उसके लोगों का रक्षक होगा। भजन संहिता 34 आयत 7 में लिखा है, यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और यहोवा का दूत उनकी रक्षा करता है। जब इज़राइली आराधना के लिए जाते, ईश्वरीय शक्ति उनके शत्रुओं पर रोक लगाती थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। निर्गमन 34 आयत 24। इन पर्वा में सर्वप्रथम फसह और अखमीरी रोटी का पर्व यहूदी वर्ष के प्रथम महीने अबीब में मनाया जाता था। यह समय मार्च के अंत और अप्रैल के प्रारंभ के समतुल्य था। शीत ऋतु की ठंड जा चुकी थी, उत्तरवर्ती वर्षा समाप्त हो गई थी और सारी प्रकृति बसंत ऋतु के सौंदर्य और उसकी ताजगी में आनंदित थी। तराइयों और पहाड़ों पर घास हरी थी और जंगली फूल मैदानों की शोभा बढ़ा रहे थे। चंद्रमा, जो पूरी होने को था, संध्या को आनंदपूर्ण बना रहा था। इस ऋतु को सुंदरता से चित्रित किया गया है। देख, जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर के वृक्ष पर अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फल रही हैं, वे सुगंध बिखेर रही हैं। श्रेष्ठ गीत 2 आयत 11-13। देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक तीर्थयात्रियों के समूह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को छोड़ पहाड़ों से पशुपालक, गलील के समुद्र से मछुआरे, खेतों से किसान और धार्मिक संस्थाओं से भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र सभी ने उधर का रुख किया जहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई। उन्होंने कई चरणों में यात्रा की क्योंकि कई पैदल यात्री थे। कारवां में लोग लगातार जुड़ रहे थे और पवित्र नगरी पहुंचने से पहले वे प्रायः बहुत बड़े हो जाते थे। प्रकृति की मनोहरता ने इज़राइलियों के हृदयों में प्रसन्नता और भलाई के दाता के प्रति कृतज्ञता को जागृत किया। श्रेष्ठ इब्री भजन गाकर यहोवा के गौरव और महिमा की स्तुति की गई। तुरही के स्वर पर झांझ के संगीत के साथ सैकड़ों की आवाजों में धन्यवाद का गीत गाया गया। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। वहां यहोवा के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। भजन संहिता 122 आयत 1-6। जब उन्होंने अपने चारों ओर उन पहाड़ों को देखा जहां मूर्ति पूजक अपनी वेदी की आग जलाने के अभ्यस्त थे, इज़राइलियों ने गाया, मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। भजन संहिता 121 आयत 1-2। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे सियोन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। भजन संहिता 25 आयत 1-2।
पवित्र नगरी के सदृश पहाड़ों के ऊपर से
उन्होंने मंदिर की ओर बढ़ते हुए उपासकों के विशाल समूहों को श्रद्धा युक्त भय के साथ देखा। उन्होंने लोबान के उठते धुएं को देखा और पवित्र धर्म किया का संदेश देते लेवियों की तुरहियों का शब्द सुना और इस घड़ी से प्रेरणा पाकर उन्होंने गाया, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। भजन संहिता 48 आयत 1-2। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे मेरे लिए। धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता 112 आयत 7, 118 आयत 19, 116 आयत 18-19। यरूशलेम के सभी घर तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाते थे और कक्षों को निःशुल्क दिया जाता था, लेकिन ये सब मिलाकर भी विशाल सभा के लिए पर्याप्त नहीं होता था और आसपास के पहाड़ों शहर में प्रत्येक संभव स्थान पर तंबू खड़े किए जाते थे। महीने के 14वें दिन संध्या होने पर फसह का पर्व मनाया जाता था। उसके प्रभावशाली अनुष्ठान मिस्र में इसराइलियों के दासत्व का स्मरण कराते थे और उस बलिदान की ओर संकेत करते थे जो उन्हें पाप के बंधन से मुक्त करेगा। जब उद्धारकर्ता ने कलवरी पर अपने प्राण न्यौछावर किए, फसह के पर्व का महत्व समाप्त हो गया और जिसका फसह का सर्व प्ररूप रहा था, इसी कार्यक्रम के रूप में प्रभु भोज की विधि स्थापित की गई। फसह के पर्व के बाद अखमीरी रोटी का 7 दिन का पर्व मनाया जाता था। पहला और 7वां दिन पवित्र दीक्षांत समारोह के दिन थे, जब कोई दासत्व वाला कार्य नहीं किया जाना था। पर्व के दूसरे दिन वर्ष की उपज के पहले फल परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे। जौ फिलिस्तीन का सबसे पहले तैयार होने वाला अन्न था और पर्व के प्रारंभ में ये पकने पर आता था। अन्न की एक बाली याजक द्वारा परमेश्वर की वेदी के सम्मुख लहराई जाती थी, जो इस बात की स्वीकृति थी कि सब कुछ परमेश्वर का था। जब तक यह विधि संपन्न नहीं होती थी, उपज को इकट्ठा नहीं किया जाता था। पहले फलों की भेंट चढ़ाने के 50 दिनों बाद पिंतेकुस्त, जिसे कटन का पर्व और सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता था, भोजन के रूप में तैयार किए गए अन्न के लिए आभार की अभिव्यक्ति के रूप में परमेश्वर के सम्मुख 2 अखमीरी रोटियों की भेंट चढ़ाई जाती थी। पिंतेकुस्त केवल एक ही दिन के लिए होता था, जो धार्मिक विधि को समर्पित था। 7वें महीने में झोपड़ियों का पर्व या एकत्रित होने का पर्व मनाया जाता था। यह पर्व अंगूर के बागों, जैतून की वृक्ष वाटिकाओं और फलोद्यानों में परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीष के लिए आभार प्रकट करता था। ये वर्ष का सर्वोच्च उत्सव संबंधी सम्मेलन होता था। भूमि अपनी अतिरिक्त उपज उत्पन्न करती थी। कटी हुई उपज को खाद्य भंडारों में इकट्ठा कर दिया जाता था। फलों, तेल और दाखरस को संचित कर दिया जाता था। पहले फलों को आरक्षित किया जाता था और फिर लोग उस परमेश्वर के लिए, जिसने उन्हें इतनी आशीषें दी थी, धन्यवाद की भेंट लेकर आते थे। पर्व को विशेष रूप से हर्षोल्लास का अवसर होना था। ये प्रायश्चित के दिन के तुरंत बाद मनाया जाता था, जब यह आश्वासन दे दिया जाता था कि उनका अधर्म भुला दिया जाएगा। परमेश्वर के साथ सुलह होने पर अब वे उसके सम्मुख उसकी भलाई का अंगीकार करने और उसकी दया के लिए उसकी प्रशंसा करने आते थे। कटनी के परिश्रम की समाप्ति पर और नए वर्ष के कठिन श्रम का प्रारंभ न होने पर लोग चिंतामुक्त होते थे और अपने आप को उस समय के पवित्र आनंदमयी प्रभावों को समर्पित कर सकते थे। हालांकि केवल पिताओं और पुत्रों को पर्व में आने का आदेश होता था, फिर भी जहां तक संभव होता था, संपूर्ण घराना इन पर्वाओं के लिए उपस्थित हो सकता था और उसके अतिथि सत्कार के लिए दास, लेवी, परदेशियों और निर्धनों का स्वागत किया जाता था। फसह के पर्व के समान झोपड़ियों का पर्व भी संस्मारक है। बिहरों में बिताए जीवन की स्मृति में लोग अपने अपने घरों से निकलकर अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षकों की डालियां और नदियों के किनारे लगे पेड़ों से बने अस्थायी आश्रयों या झोपड़ियों में रहते थे। लय व्यवस्था 23, आयत 40, 42, 43। पहला दिन पवित्र सम्मेलन होता था और पर्व के 7 दिनों में 8वां दिन जोड़ा जाता था, जिसे उसी तरह मनाया जाता था। इन वार्षिक सभाओं में वृद्धि व नौजवानों के हृदय परमेश्वर की सेवा के लिए प्रोत्साहित होते थे और देश के विभिन्न भागों से आए लोगों का मेलजोल उन बंधनों को मजबूत करता था जो उन्हें परमेश्वर से और एक दूसरे से बांध कर रखते थे। अच्छा होता कि वर्तमान में भी परमेश्वर के लोग झोपड़ियों का पर्व मनाते, परमेश्वर की उन पर आशीषों का आनंदमयी स्मरणोत्सव, जैसे इज़राइली परमेश्वर द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाए छुटकारे और मिस्र से उनकी यात्राओं के दौरान उनके आश्चर्यजनक संरक्षण के स्मरण में उत्सव मनाते थे। इसी प्रकार हमें भी उन विभिन्न तरीकों का कृतज्ञतापूर्ण स्मरण करना चाहिए जो उसने हमें संसार से बाहर निकालने और पाप के अंधकार से अपने अनुग्रह और सच्चाई के बहुमूल्य प्रकाश में लेकर आने के लिए अपनाए। जो पवित्र स्थान से कुछ दूरी पर रहते थे उनके लिए प्रत्येक वर्ष का एक महीना वार्षिक पर्वों में उपस्थित होना अनिवार्य था। भक्ति का ये उदाहरण धार्मिक धर्म क्रियाओं की महत्ता और हमारे सात्विक और आध्यात्मिक रुझान को स्वार्थपूर्ण सांसारिक रुचियों के ऊपर रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने के लिए मेलजोल के विशेषाधिकार की उपेक्षा करते हैं तो हमें नुकसान होता है। हमारे हृदय उसके पवित्र प्रभाव से जागृत और प्रबुद्ध होना बंद कर देते हैं और आध्यात्मिक पतन होने लगता है। मसीही होते हुए हमारे पारस्परिक व्यवहार में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के अभाव में हम बहुत कुछ खो देते हैं। वो जो स्वयं को अपने तक ही सीमित रखता है वो उस स्थान को नहीं भरता जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। हम सभी एक पिता की संतान हैं और प्रसन्नता के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। परमेश्वर और मानवता दोनों का हम पर अधिकार है। हमारे स्वभाव के सामाजिक भाव है, वे हमारे मन में अपने भाइयों के लिए सहानुभूति उत्पन्न करते हैं और दूसरों को आशीषित करने के लिए हमारे प्रयत्नों में आनंदित करता है। झोपड़ियों का पर्व न केवल संस्मारक था वरन प्रतीकात्मक भी था। वो केवल बीहड़ के पड़ाव की ओर ही संकेत नहीं करता था वरन कटनी के उत्सव के तौर पर ये संकेत करता था निर्णायक संचयन के दिन की ओर, जब फसल का प्रभु आग में भस्म करने के लिए जंगली घास के पूले बनाने और गेहूं को उसके गोदाम में इकट्ठा करने को अपने फसल काटने वालों को भेजता है। उस समय सभी दुष्टों को नष्ट कर दिया जाएगा, वे ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। ओबद्या आयत 16। संपूर्ण सृष्टि की प्रत्येक आवाज परमेश्वर की आनंदपूर्ण स्तुति करने में एक हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 5 आयत 13 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। बीहड़ में उनके पथिक समान जीवन के दौरान परमेश्वर की नम्रतापूर्ण देखभाल और मिस्र में उनके दासत्व से छुटकारे में उसकी करुणा का स्मरण करते हुए इज़राइल के लोगों ने झोपड़ियों के पर्व पर परमेश्वर की स्तुति की। हाल ही में समाप्त हुई प्रायश्चित के दिन की धर्म किया के माध्यम से मिली स्वीकृति और क्षमा का बोध होने पर वे आनंदित हुए। लेकिन जब प्रभु के बचाए लोग स्वर्गीय कनान में सुरक्षित एकत्रित हो जाएंगे व उस श्राप की अधीनता से सर्वदा के लिए छुटकारा पालेंगे जिसके प्रभाव में सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, रोमियो 8 आयत 22, वे अकथनीय प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मनुष्य के प्रायश्चित का मसीह का महान कार्य उस समय तक समाप्त हो चुका होगा और उनके पाप हमेशा के लिए मिटा दिए गए होंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कार्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी और प्यासी पृथ्वी तालाब बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने न पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। पैदल यात्रा करने वाले पुरुष चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी नहीं भटकेंगे। वहां सिंह नहीं होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा और ना ही वह वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यशाया 35 आयत 1, 2, 5 से 10।